आज है गुरुवार मई की 21 तारीख। स्वागत है आपका दिनभर में। मैं हूं निखिल रंजन। रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के भविष्य पर बातचीत में शामिल होने पर तैयार हुआ म्यांमार। यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा वायुसेना का लड़ाकू विमान, आखिर हुआ क्या?
देखिए, ये एक तरह का कैपेबिलिटी है जो कि हम लोग हासिल करना चाहते थे। हम लोग मतलब कि एयरफोर्स किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी जहाज के अंदर भी हो सकती है, इमरजेंसी ऑन ग्राउंड भी हो सकती है।
मैगी नूडल्स में मिल रहा है सीसा, कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी। मोदी सरकार के एक साल पर खास प्रस्तुति, कितने वादे हुए पूरे।
पार्टली ये रिफ्लेक्शन है कि अब औरतों को जरा हिम्मत आ रही है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिसमैन हैव टू टेक डाउन ना, जब इट्स इनकंबेंट इन द लॉ।
होंगी आपकी चिट्ठियां और खेल की खबरें भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान प्रवासियों की समस्या पर चर्चा के लिए थाईलैंड में अगले हफ्ते होने वाली आपात बैठक में म्यांमार के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे, ये जानकारी म्यांमार के सरकारी अधिकारियों ने दी है। कूटनीतिक दबाव के बावजूद म्यांमार के इस बैठक में शामिल होने को लेकर संदेह बना हुआ था। समुद्र में फंसे हजारों प्रवासियों में बड़ी संख्या म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की है। इन लोगों को म्यांमार में नागरिक के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा है कि इन प्रवासियों को स्थायी तौर पर बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा विकसित देशों में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर पिछले 30 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीर देशों में संपत्ति का वितरण संकेंद्रित है। रिपोर्ट के एक लेखक मार्क पियर्सन ने कहा कि ये आर्थिक विकास के लिए खतरा है। मार्क पियर्सन ने कहा,
It's not just income that we're seeing being very concentrated. You look at wealth itself, capital,
सिर्फ आमदनी में गैर बराबरी नहीं देखी जा रही, संपत्ति में भी यही बात है। अमीर देशों में निचले आर्थिक स्तर पर 40% लोगों के पास सिर्फ 3% निजी संपत्ति है, जबकि उच्च आर्थिक स्तर के 10% लोगों के पास आधे से ज्यादा संपत्ति है। आमदनी और संपत्ति के इस केंद्रीयकरण से पता चलता है कि अवसरों में भी गैर बराबरी है, जो कि विकास में एक बाधा की तरह है। ये थे ओईसीडी के मार्क पियर्सन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 106 लोगों को एक ईसाई दंपत्ति की हत्या का दोषी करार दिया है। 6 महीने पहले एक ईसाई दंपत्ति को ईश निंदा में लिप्त बताते हुए भीड़ ने पीट पीट कर जला दिया था। इस मामले में अभी 32 लोग लापता बताए जाते हैं। मारे गए गरीब दंपत्ति सज्जात और शमा मसीह पंजाब प्रांत में एक ईंट भट्टी में कई वर्षों से काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में 3 लोगों ने इन दोनों के खिलाफ भीड़ को भड़काने का काम किया, जिसके बाद 400 लोग जमा हो गए और उनकी हत्या कर दी गई। कीनिया के स्थानीय नेताओं के मुताबिक इस्लामिक संगठन अल शबाब ने देश के उत्तर पूर्वी शहर गैरिसा में एक मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। धार्मिक सभा के एक सदस्य ने कहा कि तकरीबन 40 हथियारबंद जिहादी इस कार्रवाई में शामिल थे। इन चरमपंथियों ने 2 घंटे तक मस्जिद में धर्मोपदेश दिया, फिर झाड़ियों में गायब हो गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर के पहले अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। शुरुआत करते हैं रोहिंग्या मुसलमान प्रवासियों की समस्या से। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से हजारों प्रवासी समंदर में इधर से उधर भटकते रहे हैं और उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। भूखे प्यासे भटकते प्रवासियों की खाने को हुई लड़ाई में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की बात भी सामने आई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया इन लोगों को अस्थायी शरण देने पर तैयार तो हुए हैं। अब म्यांमार के अधिकारियों ने कहा है कि वे इलाके के प्रवासियों के संकट से निपटने के लिए अगले हफ्ते थाईलैंड में एक बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले म्यांमार के इस किस्म की बैठक में शामिल होने को लेकर संशय जताया जा रहा था। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भी रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़े ताजा हालातों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासियों को पश्चिमी देशों की तरफ आकर बसने नहीं दिया जाएगा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
खाने पीने के सामान के बगैर ही अंडमान के समुद्र में कई दिनों से भटक रहे तकरीबन 7,000 से अधिक रोहिंग्या प्रवासियों के लिए अब कुछ राहत की खबर है। मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ से अस्थायी पनाह दिए जाने के आश्वासन के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा है कि उनका देश अंडमान सागर में रोहिंग्या प्रवासियों को तलाश करेगा। उधर इन प्रवासियों से अब तक मुंह मोड़े बर्मा ने भी अगले हफ्ते इस मसले पर थाईलैंड में एक बैठक में शामिल होने की बात कही है। अब तक इस मसले से जुड़ी बैठक में बर्मा ने भाग नहीं लिया था और अब भी उसके भाग लेने पर संशय जताया जा रहा था। इसके चलते कूटनीतिक तौर पर एक असमंजस भरे हालात बन गए थे। समुद्र में फंसे इन प्रवासियों में से अधिकतर प्रवासी रोहिंग्या समुदाय के हैं जो कि बर्मा जा रहे थे, लेकिन वहां की सरकार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है और वे इन्हें अपनी सीमा में नहीं आने देना चाहती है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी समुद्री नावों में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन्हें बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री टोनी एबट ने तल्खंदाज में कहा है कि ऐसे प्रवासियों को पश्चिमी देशों की तरफ आकर बसने नहीं दिया जाएगा। टोनी एबट कह रहे थे कि मानव तस्करी को रोकने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हम मानवता के बतौर कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम साफ कर देना सबसे सही है कि अगर कोई फटी हुई नावों में बैठकर ये सोचता है कि वो पश्चिमी देशों में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगा तो ये नहीं होना है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट के शब्द। टोनी एबट की लिबरल पार्टी से ही ऑस्ट्रेलियाई सांसद फिलिप रूडाक ने कहा है कि दूसरे देशों को भी कुछ प्रवासियों की व्यवस्था करनी चाहिए। रूडॉक कह रहे थे कि इस समय जरूरत एक समुचित कदम उठाने की है। अगर आप पीछे देखें तो वियतनाम युद्ध के समय क्या हुआ था, उस समय सभी देशों ने, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने भी साझे तौर पर व्यवस्थाएं की थी, और मेरे ख्याल से जब आपके सामने इस तरह के हालात होते हैं जहाँ की यूरोप के कई देश शामिल हों, तो हमें इन समस्याओं को साझे तौर पर देखना होगा। ये थे ऑस्ट्रेलियाई सांसद फिलिप रूडॉक के शब्द। बर्मा मानता रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आए प्रवासी हैं, जबकि ये कई पीढ़ियों से बर्मा में रहते आए हैं। बर्मा में रोहिंग्या समुदाय की जिंदगी पर कई प्रतिबंध हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्री किनारों में भटक रहे इनमें से तकरीबन 3,000 रोहिंग्या प्रवासियों को अब तक स्थानीय लोग बचा चुके हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया ने दूसरे देशों से भी प्रवासियों को कहीं बसाए जाने के लिए मदद की अपील की है।
दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन तेज रफ्तार गाड़ियों के हादसे का शिकार होने की बात सुनने को मिलती है। अच्छी सड़क देख करके लोग खूब तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हैं। आज सुबह जो है वहां एक वायुसेना का लड़ाकू विमान भी सड़क पर उतर गया। भारतीय वायुसेना का विमान उतरा तो लोगों को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन वायुसेना ने बताया कि ये एक पहले से सोची समझी तैयारी के साथ की गई कार्रवाई थी जिसका मकसद वायुसेना की क्षमता को परखना था। थोड़ी देर पहले मैंने वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर SS वीरदी से बात कर पूछा कि कितना सफल रहा यह ऑपरेशन।
बिल्कुल सफल रहा है, इनफैक्ट क्योंकि हमने जितने भी हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स जो भी थे, हमने सबको अपने जितने भी एलिमेंट्स थे हम वो सारे हमारे कंट्रोल में थे, तो इस वजह से ये सफल रहा। सेफ्टी एलिमेंट्स जैसे कि हमने एक मेकशिफ्ट ATC बनाया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल था हमारे पास, फिर हमारे पास सेफ्टी व्हीकल्स थे, रिकवरी व्हीकल्स थे, और बर्ड वार्निंग के लिए हमारी टीम थी हमारे साथ, जो कि अगर मिराज के फ्लाइट पाथ में कोई बर्ड आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, तो उसको वार्न करने के लिए पायलट को। ऑन सिक्योरिटी के तौर पे वी हैड द पुलिस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आगरा मथुरा, उन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया, यूपी गवर्नमेंट ने पूरी सपोर्ट किया है। तो इस वजह से ये जिस तरह बिकॉज एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल वेरी सक्सेसफुल लैंडिंग।
आखिर कौन सी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े?
नहीं देखिए, ये एक तरह का कैपेबिलिटी है जो कि हम लोग हासिल करना चाहते थे। हम लोग मतलब कि एयरफोर्स किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी जहाज के अंदर भी हो सकती है, इमरजेंसी ऑन ग्राउंड भी हो सकती है, तो अगर कभी जरूरत पड़े कि भाई जहाज को हमें फटाफट उतारना है, और अगर तो क्या हम उसको جلدی سے جلدی اگر نیچے اتارنا ہو تو کیا ہم اس کو اگر سڑک ہے تو سڑک کے اوپر اتار سکتے ہیں کہ نہیں. اس کو محض ایک طور پہ ایک کیپیبلٹی بلڈنگ ایکسرسائز کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے. دس از واٹ وی وانٹ ٹو سے.
تو کیا اس طرح کی کچھ اور بھی پلان ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کچھ دوسرے ویمانوں کو لے کر کے, جیسے اس بار آپ نے میراج کو ٹرائی کیا تھا, کیا سکھوئی یا جو دوسرے ہمارے پاس لڑاکو ویمان ہیں ان کو بھی ٹرائی کریں گے یا دوسری سڑکوں پر بھی ٹرائی کریں گے دوسرے علاقوں میں؟
ہاں, دوسری سڑکیں اور دوسرے علاقوں میں بھی ٹرائی کریں گے. ہمارے پاس پلان ہیں جس کے لیے ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اور کہاں کہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے اور کس کس طرح کے ویمانوں کو اتارا جا سکتا ہے, وہ سب ابھی پلان میں ہے.
جو اندر ایئرپورٹ ہمارے ہوتے ہیں ایئر فورس کے یا سول, وہاں پر اتارنے اور سڑک پر اتارنے دونوں میں بیسک فرق کیا ہے؟
بیسک فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایئر فیلڈ ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ ہوتے ہیں, جو سول کے یا ملٹری کے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک تو چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں, تو باہر سے کوئی انفلٹریشن, کوئی آدمی, کوئی پیسنجر, کوئی گاڑی, کوئی جانور, کچھ نہیں آ سکتا. مطلب کہ اس طرح کا ایک پروٹیکشن رہتی ہے. یہاں پہ سڑک پہ اتارنے میں یہ سب چیزوں سے خطرہ رہتا ہے, تو اسی لیے انلیس یہ سیکورٹی, دیٹس وائی وی ہیو ٹو پولیس ہمارے ساتھ تھی. اگر پولیس نہیں ہوتی تو وی کوڈ ناٹ ہیو کنٹرول آل دس ٹریفک اینڈ آل دس, یو نو, پیپل کمنگ آن ٹو دا روڈ, اور وہ ایک طرح کا خطرہ رہنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو رن وے وغیرہ بلڈ کیے جاتے ہیں وہ ان کی اسٹینڈرڈ ڈائمینشن ہوتی ہے, ان کو ایک پراپر ایک لے ڈاؤن ٹیکنیک ہے یا پروسیجر کہہ لیجیے, اس کے حساب سے اس کو لے ڈاؤن کیا جاتا ہے. میرے سڑک پہ یہ ہوتا ہے کہ سڑک کو پہلے سروے کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں پتا کرنا پڑتا ہے وہ اتنا لوڈ بیئرنگ کر پائے گا, جہاز کا ویٹ لے پائے گا, نہیں لے پائے گا, تو آل دوز تھنگ. تو اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے. بٹ ناؤ ونس ایک بار ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ یا اس جگہ پہ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک طرح کا ہمارے لیے ابھی یہ کہ ہم اس سے ابھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ناؤ وی کین تھنک آف دا نیکسٹ لیول.
یہ تھے ایس ایس ویردی, ونگ کمانڈر ایس ایس ویردی, اور بتا رہے تھے کہ جو سڑک پر ویمان اتارنے کی جو کاروائی کی گئی تھی وہ کتنی سفل رہی ہے. اور اب بات کرتے ہیں اس میگی کی جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بڑی پسند آتی ہے لیکن اب بڑی خطرناک ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے. اتر پردیش کی سرکار نے میگی کمپنی کے ادھیکاریوں کے خلاف اپرادھک معاملہ درج کرنے کی پرکریا شروع کر دی ہے. اتر پردیش میں میگی نوڈلز کے ایک خاص بیچ والے پیکٹوں کو ضبط کیا گیا ہے اور انہیں جانچ کے لیے بھیج دیا گیا. سرکار کا دعویٰ ہے کہ جانچ میں مونو سوڈیم گلوکومیٹ اور سیسے کی خاصی ماترا پائی گئی ہے. کیا ہے پورا معاملہ بتا رہے ہیں بی بی سی سنواددتا سلمان راوی.
اتر پردیش کی سرکار نے چاؤ سے کھائے جانے والے میگی کے خاص بیچ کے پیکٹوں کو بازار سے واپس لیے جانے کا آدیش جاری کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ راجیہ سرکار کے کھادیہ سرکشا ایوم اوشدھی پرشاسن وبھاگ نے کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کی پرکریا بھی شروع کر دی ہے. وبھاگ کے سہایک آیوکت وجے بہادر نے بی بی سی کو بتایا کہ کولکاتہ استھت سرکاری پریوگ شالا دوارا میگی کے ضبط کیے گئے سیمپلوں کی جانچ کے بعد دی گئی رپورٹ کے آدھار پر یہ قانونی کاروائی کی جا رہی ہے.
سینٹرل ریفرل لیب کی رپورٹ ہمارے لیے فل اینڈ فائنل ہوتی ہے, اس کے آگے اور کوئی فردر ٹیسٹنگ نہیں ہے. اس کے آدھار پر ہم لوگ اپنا پروسیکیوشن کی پروسیڈنگ کریں. یہ امپریزنمنٹ سے پنشیبل آفنس ہے, ان میں منیمم 3 سال سے اوپر کی سزا ہو سکتی کاروائی.
اور اس میں کون کون ایکیوز بن سکتے ہیں؟
جو اونر وغیرہ ہیں
انڈیا والے ہوں گے یا باہر والے بھی, کیونکہ یہ تو باہر کی کمپنی ہے.
اب یہ کورٹ پہ ہے کہ ان کو اگر باہر کو بھی پنش کرنا چاہے باہر والوں کو بھی. اب ایکچولی ہم ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ ایویڈینس کریٹ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز.
یہ معاملہ تب شروع ہوا جب اتر پردیش سرکار کے کھادیہ سرکشا ایوم اوشدھی پرشاسن وبھاگ نے میگی کے کئی پیکٹوں کو ضبط کر ان کی جانچ راجیہ کے ہی پریوگ شالا میں کی. ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جانچ میں مونو سوڈیم گلوکومیٹ کی کافی ماترا پائی گئی, مگر ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ میگی کمپنی نے راجیہ کی پریوگ شالا کی رپورٹ کو چنوتی دی تھی اور کولکاتہ استھت کیندر سرکار کی پریوگ شالا میں جانچ کرانے کا انوروھ کیا تھا. وبھاگ کے سہایک آیوکت وجے بہادر کا کہنا ہے کہ کولکاتہ کی پریوگ شالا دوارا کی گئی جانچ میں نئے تتھیہ سامنے آئے. جانچ میں پتا چلا کہ میگی کے پیکٹوں میں لیڈ یعنی سیسے کی ماترا بھی طے مانکوں سے کافی ادھک پائی گئی.
مارکیٹ سے جو ہماری روٹین سرویلانس کی کاروائی ہوتی ہے, اس سرویلانس میں ان کا کوالٹی چیک کے لیے نمونہ لیا گیا. یہ نمونہ جب ہماری اسٹیٹ لیب میں جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ یہ ایکسس اماؤنٹ میں ملا. انہوں نے اس پہ کنٹیسٹ کیا, ہماری لیب کی رپورٹ کو, اسٹیٹ لیب کی رپورٹ کو کنٹیسٹ کیا. جن کے پاس رائٹ ہے انہوں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے اپیل کیا کہ ہمیں سینٹرل فوڈ لیبورٹری جو گورنمنٹ آف انڈیا کنٹرول کرتے اسے ٹیسٹ کرانے کی इजाजत वो कोलकाता को भेज दिया, जो हमारे यूपी के लिए डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी। कलकत्ता लैब ने एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को तो उन्होंने पाया ही कि वो प्रेजेंट है। साथ साथ उन्होंने एक और चीज सबसे जो ऐलानी चीज दिया वो ये दिया कि इनमें लेड जो है प्रोपोर्शनेटली बहुत हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये 2.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए मैक्सिमम, उसकी जगह 17.20।
इस बीच मैगी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कंपनी स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट से अवगत है। जहां एक ओर उनकी जांच जारी है, वहीं कंपनी का कहना है कि उसने अपने उत्पाद के नमूने एक स्वतंत्र और मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि मैगी नूडल्स में इस्तेमाल होने वाली सभी कच्ची सामग्री के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के नियंत्रण का वो पूरा ध्यान रखती है, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी गई अपनी चिट्ठी में कंपनी का लाइसेंस जब्त करने की सिफारिश भी की है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सलमान रावी ने बात की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़े अमित खुराना से।
बट ब्रॉडली इट इज कंसिडर्ड एज अ कंटेमिनेंट, हैवी मेटल कंटेमिनेंट, और उसकी जो मात्रा है अगर वो रिपोर्ट जो की गई है और वो सही है तो वो काफी ज्यादा है जो अलाउड है उससे। जो मैक्सिमम अलाउड है वो 2.5 ppm है।
ये तो 17 ppm की बात इसमें आ रही है रिपोर्ट में जो कलकत्ता वाली लैब की।
हाँ, अगर 17 ppm है तो क्लियरली वो इट इज वेरी मच हाई। और लेड का ऑफकोर्स खासतौर पे वल्नरेबल कम्युनिटी जो है, चाइल्ड ग्रुप जो है, उसमें तो है ही।
और ये जो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है, इसको अगर ये कहा जाता है कि इसकी काफी मात्रा पाई गई, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूकोमेट की काफी मात्रा मिलने का मतलब क्या होता है? ये मतलब एक जो टेक्निकल टर्म्स में एक आम आदमी को अगर समझाया जाए कि मोनोसोडियम ग्लूकोमेट ये है क्या और इसका क्या असर पड़ता है अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है?
देखिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक फ्लेवर एनहेंसर है। टिपिकली ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वैसे तो ये और भी काफी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नूडल और कई सारे प्रोडक्ट्स में हमारी फूड सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से अलाउड नहीं है। उनमें से एक ये भी है। अब ये हम नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता उन्होंने मसाला मैगी चेक किया है या फ्लेवर जो मसाला उसके अंदर डला होता है उसके अंदर उन्हें मिला है, ये हमें नहीं पता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके जो ये अगर ये गैप है, पॉसिबल लूप होल है, तो इसको हमारी फूड अथॉरिटी को ध्यान से कर्व करना चाहिए, इसको प्लग करना चाहिए। और रही बात इसके लेवल की, तो लेवल से रिलेटेड स्टैंडर्ड नहीं है, है स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में ये अलाउड, तो नूडल और पास्ता में तो अलाउड ही नहीं है, तो एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए था। अगर उसमें मिलता है तो वो अनलॉफुल एंट्री है, अनलॉफुल है।
कहा जा सकता है कि अब चूंकि ये मामला सामने आ गया है तो बेहतर होगा कि पूरी जांच हो जाए मैगी के जो नूडल्स मार्केट में बच्चे खा रहे हैं और इतना क्रेज है। हाँ, आपको क्या लगता है?
बहुत स्ट्रांगली हम लोग वेलकम कर रहे हैं इस मूव का। ये इस लेवल की स्टेट्स में मॉनिटरिंग होती नहीं थी अब तक, और जो हो रही है मैगी में खासतौर पर ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट में, तो बहुत अच्छा है, वी वेलकम इट। और टू द एक्सटेंट की इसमें प्रोडक्ट रिकॉल की बात आ रही है तो ये भी अच्छा है। ओनर्स जो है वो इस बात पे आ जाता है कि हम रॉ मटेरियल में शायद होगा, हम ऐड नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, फिनिश प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स उसको मॉनिटर करने हैं। कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेवारी रॉ मटेरियल पे नहीं डाली जा सकती, जिम्मेवारी फाइनल प्रोडक्ट देने वाली की ही होती है। जो एक्ट कहता है वो कहता है इट शुड नॉट कंटेन, और जब ये लोग जवाब देते हैं तो कहते हैं हमने ऐड नहीं किया। दोनों बातें अलग है। ना करने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती, उसमें अल्टीमेटली नहीं होना चाहिए, आपको ये एंश्योर करना है।
तो ये मैगी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सलमान रावी ने बात की थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़े अमित खुराना से।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ बहुत सारे वादे किए गए थे। इस मौके पर बीबीसी खास सीरीज लेकर आया है। अगले कुछ दिनों में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार ने क्या प्रमुख वादे किए थे और उन्हें पूरा करने की दिशा में बीते एक साल में क्या कुछ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों में महिलाओं की सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। ऐसे तमाम उपायों की बात की गई थी जिनके जरिए महिलाओं में सुरक्षा की भावना को पुख्ता करने की सोच थी। एक साल के समय में इस दिशा में क्या प्रयास किया गया? वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा महिलाओं के मुद्दे पर लगातार लिखती रही हैं। हमारी सहयोगी दिव्या आर्य ने उनसे पूछा कि कहां तक ये वादे पूरे हुए।
उन्होंने कहा था कि
660 रेप क्राइसिस सेंटर्स होंगे, माने हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेप क्राइसिस सेंटर होगा, ये प्रॉमिस किया था, मेनका गांधी ने अनाउंस भी किया था। अब रियलिटी ये है कि 36 हैं रेप क्राइसिस सेंटर्स, जो बजट एलोकेशन करने वाले थे इसके लिए अबाउट 244 करोड़, वो 18 करोड़ है। अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है रेप के लिए स्पेसिफिकली, अगर उसके लिए भी आप जो पैसा प्रॉमिस करते हैं वो रिलीज नहीं करते एंड यू डोंट मेक द एफर्ट, यू डोंट रिकग्नाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रेप क्राइसिस सेंटर्स की जरूरत क्यों है।
आपने मनी की बात की, तो ये निर्भया फंड जो क्रिएट किया गया था 1000 करोड़ रुपए का, इस पूरे फंड का कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ।
Correct. और जेटली ने तो और 1000 करोड़ अनाउंस किए बजट में, बट द रियलिटी इज जो पहला 1000 करोड़ जो दिया था निर्भया फंड को, वो तो यूज भी नहीं हुआ।
एक और बात, इन्होंने कहा था कि पुलिस की सेंसिटाइजेशन की जाएगी और पुलिस फोर्स में महिलाओं का जो नंबर है उसे बढ़ाया जाएगा।
हाँ।
और मार्च में एक कैबिनेट डिसीजन लिया गया कि हाँ। एक तिहाई जो पोस्ट हैं पुलिस फोर्स में वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी, इस बारे में भी कुछ हाँ। आप कहना चाहेंगे?
यहाँ पे महाराष्ट्र में एटलीस्ट मैंने आई हैव नॉट हर्ड कि नंबर्स हैव गॉन अप ड्रामेटिकली, यू नो, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट है ना, सो इट हैज टू, ईच स्टेट हैज टू डू इट। सर्टनली और पुलिस विमेन हो तो अच्छा होगा, पर पुलिस मेन को भी सेंसिटाइज करना, ये तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात है ना, बिकॉज यू हैव टू देन हायर ट्रेनर्स एंड यू हैव टू क्रिएट द सिचुएशन जहां पे ये पुलिसमैन को ये सेंसिटिविटी के बारे में बात बताया जाए।
अच्छा, रेप के जनरल फिगर्स में हम एक राइज देखते रहे हैं पिछले सालों में और इस साल भी हमने एनसीआरबी के डेटा में देखा है, क्या ये कोई रिफ्लेक्शन है लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, रेप के लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को लेके?
सी, पार्टली ये रिफ्लेक्शन है कि अब औरतों को जरा हिम्मत आ रही है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिसमैन हैव टू टेक डाउन ना, जब इट्स इनकम्बेंट इन द लॉ कि वो एफआईआर उन्हें फाइल करना जरूरी है, पर इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डिसाइड, पहले महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं करती थी क्योंकि वो सोचती थी कि पुलिस कुछ करने नहीं वाली इसके बारे में, आजकल जरा यू नो एक्चुअली पीपल आर मोर कॉन्शियस that they can actually go to the police.
और अगर हम डेली उसकी बात करें, एक हेल्पलाइन है और एक ऐप लॉन्च किया गया था हिम्मत नाम से,
हिम्मत हाँ।
तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में सेफ फील करने के लिए, ये भी एक बात सरकार ने कही थी एंड उसी के एक्सटेंशन में ये हिम्मत ऐप का लॉन्च करना,
जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं इस गवर्नमेंट के वो बहुत फैंसी और एंगेजिंग है, ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ हो रहा है। और जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम लेंगे और एनालाइज करते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो जस्ट लाइक विद द रेप क्राइसिस सेंटर्स, रियलिटी है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसमें एम्फोसिस नहीं है। इतने लॉज हैं हमारे पास, इतनी पॉलिसीज हैं, और लॉज और पॉलिसीज की जरूरत है या इम्प्लीमेंटिंग व्हाट इज देयर? आप नए नए लॉ बनाते जाइए, नए नए एप्स बनाते जाए, नए नए हेल्पलाइंस बनाते जाए, उसका फायदा क्या है ऑन द ग्राउंड?
वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा बता रही थी कि बीते एक साल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कुछ हुआ।
बीबीसी इंडिया बोल। नरेंद्र मोदी सरकार का एक साल, क्या हासिल कर पाई एनडीए सरकार? क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी? अच्छे दिन किसके आए? विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में क्या अड़चने हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी से राहत क्यों नहीं मिल पाई? गुजरे 365 दिनों का क्या है आपका आकलन? इस बार इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 23 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बारी है आपके चिट्ठियों की।
आपकी राय स्वीकार कीजिए। राजेश जोशी का नमस्कार।
और नमस्कार मेरा भी, इंदु पांडे का।
इंदु जी, इतनी चिट्ठियाँ, इतनी ईमेल और फेसबुक पर इतने संदेश आए हैं कि न तो सबको पढ़ना संभव है और न ही सब लिखने वालों के नाम लेना संभव है। आप समझ ही गई होंगी, मैं बीबीसी हिंदी रेडियो के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रसारित कार्यक्रमों पर पाठकों की प्रतिक्रिया, उनकी चिट्ठी की बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि एक एक करके आप और हम चिट्ठियां पढ़ें और ये जाने कि हमारे श्रोता हमारे कितने करीब हैं।
बिल्कुल।
तो मैं शुरुआत करता हूं। एक लंबी चिट्ठी बहुत ही खूबसूरत लिखावट में आई है, पूरनपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, और लिखने वाले हैं ओम प्रकाश मंजुल। इन्होंने 75 वर्ष पूरे होने पर प्रसारित कार्यक्रमों की भरपूर तारीफ की है और आले हसन से लेकर ओंकार नाथ श्रीवास्तव, मार्क टली, रमा पांडे, अचला शर्मा, सीमा चिश्ती सभी को याद किया है और अंत में लिखा है, कम लिखे को ही बहुत समझें। पूरे दो पन्ने की चिट्ठी पढ़ना तो इंदु जी संभव नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां पेश हैं। लिखते हैं, पौन शताब्दी एक्सप्रेस को प्रसिद्ध प्रसारक अचला शर्मा ने स्टार्ट किया। पौन शताब्दी मतलब 75 वर्ष
जी।
पुराने प्रसारकों की भागीदारी ने सभा को कई मायने में विविधतापूर्ण भी बनाया, हृदयग्राही भी बनाया और हृदयाग्रही भी बनाया। देखिए क्या जबरदस्त हिंदी लिखी है इन्होंने,
बहुत ही अच्छी।
और आगे चिट्ठी आप पढ़िए।
ये चिट्ठी आई है पृथ्वी सिंह राजपुरोहित की। लिखा है कि मैं 1966 से बीबीसी सुन रहा हूं। आपने पुरुषोत्तम पाहवा, नरेश अरोड़ा और राज नारायण बिसारिया के जमाने के आजकल और विश्व भारती की याद ताजा कर दी।
बहुत
आगे इन्होंने तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है जिसके बारे में इन्हें बीबीसी हिंदी रेडियो से जानकारी मिली।
बहुत सारे हमारे श्रोता इस तरह की ईमेल लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैं ये ईमेल पढ़ता हूं जिसे हमें भेजा है आशुतोष कुमार पांडे ने, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर, बिहार से। लिखते हैं, कैलाश बुधवार को जीवन में मैंने पहली बार सुना, जिनके बारे में मेरे बाबा बड़ा जिक्र करते थे और कहते थे, अरे तुमने अभी कहां किसी को सुना है। तो कुल मिलाकर देखें तो 75 साल के कसक को गहरा घाव बना दिया, यानी इनका अभी मन भरा नहीं है। आशुतोष ने पुराने संवाददाताओं से बात करवाने की भी गुजारिश की है।
बहुत अच्छे। और ये चिट्ठी है रीमा, मध्य प्रदेश के मुकेन्द्र कुमार सोनी ने ईमेल भेजा है हमें। कहते हैं कि मैं 2003 से बीबीसी का श्रोता हूं और मुझे लगता है कि जैसे कोई दोस्त मुझे सूचनाएं दे रहा है। मैं एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने के बारे में सोच रहा हूं जिससे छात्रों को सभी प्रसारण सुनने को मिल सके। इनका सुझाव है कि बीबीसी अंग्रेजी के कार्यक्रम भी बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर मुहैया करवाए जाएं।
मुकेंद्र कुमार सोनी जी, सुझाव तो आपका अच्छा है, लेकिन फिलहाल कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिनके कारण अंग्रेजी कार्यक्रम हिंदी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो सकते। पर यह कितनी सुखद बात है कि आपको बीबीसी हिंदी रेडियो के प्रसारण पसंद आते हैं, तो आप सुनते रहिए। और ये लगे हाथों मैं एक ईमेल पढ़ता हूं। राजू राय ने ईमेल भेजा है और कहते हैं कि मैं 1996 से बीबीसी सुन रहा हूं। अब लैपटॉप का जमाना आ गया है, फिर भी मैं आपके कार्यक्रम रेडियो पर ही सुनना पसंद करता हूं और इन्हें भी 75 वर्ष के विशेषांक काफी पसंद आए हैं। इंदु जी, एक मैं देख रहा हूं आपके पास एक ईमेल है जो मैं पढ़ सकता हूं, परवेज आलम के नाम है।
क्यों नहीं लीजिए, पढ़िए, क्योंकि तारीफ
आप
पढ़ने
पढ़ दीजिए। नहीं, आप पढ़ दीजिए, क्या लिखते हैं
भाई। ये ईमेल सीधे परवेज आलम के नाम आई है। लिखने वाले हैं शंभु शरण मंडल, बरवा रोड, धनबाद, झारखंड से, और लिखा बहुत कुछ है। मैं चाहती हूँ एक बार आप पढ़िए तो सही।
अच्छा, मैं पढ़ूँ? ठीक है, लिखते हैं, आदरणीय परवेज भाई, मधुर याद। हम आज भी अपने प्रसारकों की चुंबकीय आवाज के कायल हैं जो बरबस हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। अपनेपन और जुड़ाव का एक अनूठा और स्वर्णिम दौर था, ये पिछले दौर की बात कर रहे हैं, जब मैं कार्यक्रम सुनने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखता और उसी दिन अपने गांव से 11 किलोमीटर दूर अपने शहर मुजफ्फरपुर के हेड पोस्ट ऑफिस में छोड़ आता। ऐसा नहीं है कि ये विशेषताएं आज नहीं है, कमोबेश हैं जरूर, लेकिन अब न रहे वे पीने वाले, अब नहीं वो
मधुशाला।
क्या बात है साहब, हम तो वाकई न वैसे पीने वाले हैं और न उस मधुशाला में हम होने का दावा करते हैं। फिलहाल जितने भी हमारे श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी ये कार्यक्रम बनाने में बहुत आनंद आया। इंदु जी, अब कार्यक्रम ये यानी आपकी राय समाप्त करने का वक्त हुआ है। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk। और इसी के साथ लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।
खेल समाचार आपको सुनाएंगे अगले अंक में, फिलहाल सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान प्रवासियों की समस्या पर चर्चा के लिए थाईलैंड में अगले हफ्ते होने वाली आपात बैठक में म्यांमार के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ आने वाले इन प्रवासियों को स्थायी तौर पर बसने नहीं दिया जाएगा। ईश निंदा के नाम पर एक ईसाई दंपत्ति की हत्या करने के लिए पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 106 लोगों के खिलाफ कत्ल के आरोप दर्ज किए हैं। 6 महीने पहले एक ईसाई दंपत्ति को ईश निंदा में लिप्त बताते हुए भीड़ ने पीट पीट कर जला दिया था। कीनिया के स्थानीय नेताओं के मुताबिक इस्लामिक संगठन अल शबाब ने देश के उत्तर पूर्वी शहर गरीसा में एक मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। धार्मिक सभा के एक सदस्य ने कहा कि तकरीबन 40 हथियारबंद जिहादी इस कार्रवाई में शामिल थे। श्रीलंका में एक मजिस्ट्रेट ने बलात्कार और हत्या के एक मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर के पहले अंक में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात 1.5 घंटे बाद। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।